ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्कंद आठ अध्याय आठ और श्लोक संख्या 21। धर्म क्वचित तत्व न भूत त्याग क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम् वीर्यम् न पुंसोऽस्य जवे कनिष्कृतः नहि द्वितीयो गुण संगवर्जितः। शब्दार्थ धर्म धर्म क्वचित भले ही पूरा ज्ञान क्यों न हो तत्र वहां नहीं भूत सुहृदम अन्य जीवों के साथ मित्रता त्याग त्याग क्वचित किसी के पास भले ही हो तत्र वहां न नहीं मुक्ति कारण मुक्ति का कारण वीर्य बल न नहीं पुंसः किसी पुरुष का अस्ति हो सकता है अज वेग निष्कृता काल की शक्ति से छुटकारा नहीं है ना तो ही निसंदेह द्वितीय दूसरा गुण संग वर्जितः प्रकृति के गुणों के कर्मज से पूरी तरह मुक्त। अनुवाद भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं होता किसी में चाहे देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों न हो फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तात्पर्य इस श्लोक में धर्म क्वचित तत्र न भूत सुहृदम कथन अत्यंत सार गर्भित है। हम वास्तव में देखते हैं कि ऐसे कितने ही हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध तथा अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग हैं जो अपने अपने धर्मों का दृढ़ता से पालन करते हैं किंतु वे सभी जीवों पर समभाव नहीं रखते। निसंदेह वे अपने को धार्मिक तो कहते हैं किंतु बेचारे पशुओं का वध करते रहते हैं। ऐसा धर्म निरर्थक होता है। श्रीमद् भागवत का कथन है पहला अध्याय पहला स्कंद दूसरा अध्याय आठवां श्लोक धर्म सुनिश्चिता पुंसाम विश्व कसेन कथा सूय नोत्पादेद यदि रतिम श्रम ही केवलम। कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालन में कितना ही पटु क्यों न हो किंतु यदि उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती तो उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन समय का अपव्यय मात्र है। मनुष्य को वासुदेव से प्रेम करने की भावना विकसित करनी चाहिए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भक्त का लक्षण यही है कि वह हर एक को हर एक का मित्र होता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भक्त धर्म के नाम पर बेचारे पशुओं का वध नहीं होने देता। बनावटी धार्मिक पुरुष तथा भगवत भक्त के बीच यही अंतर होता है। सुन नहीं रहे लास्ट नहीं याद, तो पहला तो बिल्कुल याद नहीं हो क्या कहा लास्ट में। बनावटी धार्मिक पुरुष तथा भगवत भक्त के बीच यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है ध्यान से नहीं चले यार, लोगों का ध्यान कहाँ है? आप लोगों ने मना किया हुआ यहां ध्यान रखने के लिए? ध्यान कहीं और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भागवतम क्लास है? कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः ओम हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मी जी, वेरी गुड। लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं, जो अब क्षीर सागर में मंथन हुआ तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। तो लक्ष्मी जी को सारी भेंटें मिली, सब कुछ सब लोगों ने दिया, तो अब वो पति चाहती हैं, पति ढूंढ रही हैं वो, है ना। तो लक्ष्मी जी का पति तो नारायण है, तो नारायण को ढूंढ रही हैं वो। कौन है नारायण? तो नारायण को ढूंढते हुए वो ये बातें बता रही हैं कि आम व्यक्तियों के बारे में बात कर रही हैं कि भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों ना हो, फिर भी वह समझ जीवों पर दयालु नहीं होता। तो भगवान है समझ जीवों पर दयालु। धर्म का किसको पूरा भी ज्ञान हो, किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य, त्याग हो सकता है किंतु वह मुक्ति का कारण नहीं होता। त्यागी हो सकते हैं, बड़े बड़े त्यागी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मुक्त हो गए हो। भले ही किसी में महान बल क्यों ना हो, फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। भगवान काल को भी रोक सकते हैं, है ना, भगवान काल ही है, काल उनके वश में है। हमारे कोई भी कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन काल को वश में नहीं करता। काल आता है खत्म, काल शक्तिशाली है, लेकिन भगवान काल के भी कंट्रोलर है। इसलिए भगवान जब चाहे जैसा समय चाहे वैसा आ जाता है, ठीक है ना। जब चाहे वो बरसात कर सकते हैं, जब चाहे सर्दी कर सकते हैं, कोई भी मौसम कुछ भी काल के द्वारा कुछ भी करवा सकते हैं। जब चाहे वो बड़े हो सकते हैं विश्व रूप। अब हम चाहे तो काल के हिसाब से तो बड़े होंगे, जैसे ये छोटा सा बच्चा है, इसको बड़ा थोड़ा कर सकता हूँ मैं। एक टांग इधर से पकड़ो, एक उसका कोई सिर पकड़े खींचे तो बड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन भगवान एक सेकंड में अपना विराट रूप धारण कर लिया, कुछ भी। तो काल उनके वश में है, यही यहां पे बताना चाह रही है लक्ष्मी देवी। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। तो वो कहना चाहती है पूरी तरह मुक्त कौन है? भगवान नारायण, विष्णु, कृष्ण, ये जो है मुक्त है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें बता रहे हैं। प्रभुपाद जी ये चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि धर्मा सुनिश्चिता पुंसाम विश्वकसेन कथासु यह नोत्पादेद यदि रतिम श्रम ही केवल। कि अगर आप धर्म का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका पालन करने से आपकी रति नहीं जागृत होती भगवान की कथाओं में, विश्वकसेन कथासु यह, भगवान की कथाओं में, भगवान की लीलाओं में, भगवान में आपकी रति, आपका प्रेम जागृत नहीं होता, तो वो श्रम ही वो बेकार है, श्रम किया जाते है ना, मतलब कुछ मिला नहीं, ऐसे श्रम ही करते रहे, मेहनत करते रहे, कुछ मिला नहीं। जैसे एक बार एक बारात थी, बारात, उसको दूसरे गांव में जाना था, तो वो नाव में बैठ गए, नाव में बैठ गए, और रात का समय था, और नाविक को कहा कि हमें ले चलो उधर ले चलो, और नाविक जो है उसने नाव चलाना शुरू कर दिया, चप्पू से खेलना शुरू कर दिया, उसको चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, सारी रात चलाता रहा। सुबह हो गई, सुबह हो गई तो जब उन्होंने देखा तो वही के वही है नाव, वहां से सारी रात वो चलाता रहा नाव, नाव हिली नहीं वहां से, क्या कारण था? उसका जो लंगर है वो उठाया नहीं था, श्रमेव ही केवलम, सिर्फ मेहनत की, नाव वही की वही है। तो ऐसे ही अगर हम भी मेहनत करते रहेंगे और लंगर उठाएंगे नहीं तो वहीं के वहीं रहेंगे। मेहनत बहुत कर रहे हैं हम, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ गया, पसीना आया जा रहा, लेकिन लंगर उठाए नहीं हमने। लंगर क्या है? बहुत ही कह सकती हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि धर्म का मतलब यह है, आप धर्म के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि आपका प्रेम जो है भगवान में बढ़ना चाहिए, है ना, आपकी मित्रता का भाव आना चाहिए सबके प्रति, क्योंकि धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यह है जो हमें प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, यह है नित्य धर्म, है ना। दो तरह के धर्म होते हैं, एक होते हैं नैमित्तिक धर्म, एक होता है नित्य धर्म। क्या अंतर है दोनों का? नित्य धर्म है जो नित्य है, मतलब हमारे मरने के बाद भी वो धर्म चलता रहता है। तो जो हमारी आत्मा का धर्म है, आत्मा का कार्य है, वो है नित्य धर्म है हमारा। वो सनातन धर्म है, वो वैष्णव धर्म है, जैव धर्म है। जीव का धर्म वही है जो आत्मा का धर्म है, और नैमित्तिक जो शरीर के धर्म है, शरीर के कार्य है। तो हम प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि जो लोग शरीर के धर्म को ही धर्म समझते हैं बस, उससे वो श्रमेव ही केवलम। धर्म का मतलब है कि आप वो कार्य कर रहे हो जिससे आत्मा तुष्ट हो आपकी। आत्मा असल में हम आत्मा है ना, आत्मा नित्य है ना। शरीर तो ये टेम्पोररी है, अभी ये शरीर मिला, पिछले जन्म में कोई और शरीर था, अगले जन्म में कोई और शरीर मिलेगा, जैसा शरीर मिलेगा वैसा धर्म बदल जाएगा, आवाज बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। कुत्ता कुत्ता कुत्ते का जब शरीर मिलेगा तो जब हम बोलेंगे तो फिर भव भव कुछ भी बोलेंगे निकलेगा, भव भव कुछ भी बोलना चाहे, हम प्रेम की बात बोले या गुस्से की बात बोले निकलेगा क्या, भव 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 भव। ये शरीर का धर्म ऐसा ही बोलेगा नहीं। तो नित्य धर्म जो आत्मा का धर्म है वो बदलता नहीं है, वो वही है। और मनुष्य शरीर में आके ही हम ये डिस्टिंक्शन देख सकते हैं, ये देख सकते हैं फर्क। तो जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध तथा अन्य संप्रदाय वाले धार्मिक लोग, तो ये जो सारे हैं ना, ये क्या है, ये शरीर के धर्म। आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान भी हो सकते हैं, फिर ईसाई भी हो सकते हैं, ये शरीर के धर्म है। लेकिन आत्मा को जो धर्म है वो सबका एक ही है। तो आत्मा का धर्म जो है वो है भगवान की सेवा। सेवा करना जो है ये आत्मा का धर्म है ना। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, दास हैं हम भगवान के। तो यही बात यहां बता रहे हैं कि जब अगर हम इस तरह के कार्य करें कि ये जो हमारी हमारा जो स्वरूप है ये हमारे सामने आए, हमें स्वरूप पता लगे, हमें अभी अपना स्वरूप भूले हुए हैं, हम अपने आप को हिंदू या हम अपने आप को पंजाबी या बंगाली या पढ़ा लिखा या डॉक्टर या इंजीनियर, कई तरह की उपाधियों से हम अपने आप को सोचे हम ये हैं, है ना, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा घर है, ये मेरा देश है, है? देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जान भी दे सकते हैं देश के लिए। आज हिंदुस्तान के लिए जान दो, अगला जन्म पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के लिए जान देना और हिंदुस्तानियों पे गोली मारना, नहीं। तो ये नित्य धर्म नहीं है। नित्य धर्म है जो शाश्वत है, सनातन है, वो है भगवान की सेवा। वो बताया है कि वो उसमें हमें आगे बढ़ना है, और जब उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि साब में आत्मा है, जीवात्मा तो सभी जीवात्माएं हैं, पशुओं में भी आत्मा है, पशु भी हमारे भाई हैं, पिता तो एक ही है, अहम बीज प्रदा पिता, पिता तो एक ही है, बाकी तो सब जीव उनके बच्चे हैं, तो एक ही पिता है तो सब हम भाई तो हैं। ये नहीं, ये तो मेरा भाई है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ये दुश्मन है। तो ये बातें तब आती हैं जब हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते। तो ये रियलाइजेशन होगा जब हम भक्ति के कार्यों को करेंगे एब्जॉर्प्शन से। जो भी कार्य करें उसके लिए हम समय निकालें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ समय है और कुछ नहीं है। हमारे पास हमारा सिर्फ समय ही है, सबसे कीमती चीज जो हमारे पास है वो समय। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि समय का भी हम दुरुपयोग करते हैं, समय का बेस्ट यूज नहीं करते हम। अगर हम समय इसमें गवा रहे हैं, सारा दिन जो है मतलब काम में ही लगे हुए हैं, काम से हम पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद फिर हम इंद्रिय तृप्ति में खर्च कर देते हैं, तो ये क्या है? ये तो ये समय का दुरुपयोग हो गया। ये समय का सदुपयोग नहीं है। मनुष्य जीवन हमें इसलिए नहीं मिला। मनुष्य जीवन का सदुपयोग कैसे है कि अगर हमारे पास 24 घंटे हैं तो हमें 8 घंटे जो है वो देने चाहिए शरीर को, मतलब उसमें 6 घंटे की आप नींद ले लो, 2 घंटे में बाकी सारे कार्य करो, नहाओ धो खाओ पियो सब काम। इतना जीवन सिंपल होना चाहिए। 8 घंटे हमें देने चाहिए कोई जो कार्य करना है आपको, समाज में जो भी कार्य करना है। समझ आ रहा है आपको? क्या क्या समझ में आगे आ जाओ ना आप, सहारा लेके बैठोगे तो नींद आएगी। फिर आगे इधर आओ, मेरे पास आओ ना, आपके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। बैठो बैठो शाबाश, थैंक यू। तो क्या बता रहे हैं हम, कैसे जीवन का सदुपयोग करना चाहिए मनुष्य जीवन का? तो 8 घंटे बिताने चाहिए अपने शरीर के लिए। 8 घंटे में बिताने चाहिए जो भी कार्य कर रहे हैं हम लोग, है ना, जो घर के कार्य हैं, धंधा है, कुछ भी है। और 8 घंटे बिताने चाहिए आध्यात्मिकता में। 1/3 24 घंटे में से 8 घंटे हमें भगवान की सेवा में लगाने चाहिए। आप कितना लगाते हो? 2 तो अगर हम जैसे प्रभुपाद जी ने जो हमें दिया है प्रोग्राम, उसको फॉलो करें तो 8 घंटे हो जाते हैं, है ना। जैसे 4:30 बजे हम यहां आए और अगर हम 9 बजे तक रहते हैं तो कितने घंटे हो गए? 4:30 घंटे। और फिर शाम को मान लो हम संध्या आरती कब शुरू होती है? 7 बजे। 7 बजे से लेके हम फिर 9 बजे तक रहते हैं, कितने हो गए? 6:30 घंटे हो गए। तो 1.5 घंटा और निकालो तो 8 घंटे हो जाएंगे, लगभग 6:30 घंटे तो हो ही गए। प्रभुपाद जी ने जो हमें प्रोग्राम दिया है उसमें 8 घंटे तो निकल ही आता है अगर इसको ही फॉलो करें हम तो। और बीच में हाँ रीडिंग करें, बीच में हमारी सेवा हो जाएगी। परफेक्ट प्रोग्राम दिया है प्रभुपाद जी ने। लेकिन हमारा क्या सीन है, क्योंकि हम प्रभावित हैं, माया से प्रभावित हैं, और माया का संसार है, और लोगों को ये समझ ही नहीं है आत्मा भी कोई चीज है, उनको पता ही नहीं है। शरीर को ही सब कुछ समझे बैठे हैं और शरीर का ही बोलबाला है बस सब जगह। आप देखो स्कूलों में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और नए नए सब्जेक्ट्स भी आ गए हैं, वो कहीं पे भी आत्मा का कोई सब्जेक्ट है क्या? यही नहीं। तो इसलिए हम भी फिर प्रभावित हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कम से कम भक्तों को तो जरूर इस भावना से रहना चाहिए कि हम आत्मा हैं, और उसी तरह की बातें करनी चाहिए हमें। हम बातें नहीं करते ना वैसे, बातें फिर वही करते हैं शरीर के हिसाब से, नहीं? वो पंजाबी है ना, तो पंजाबी है तो ऐसी तो बोलेगा, ये ऐसी व्यवहार है, ये पंजाबी है ऐसे व्यवहार करेगा भैया, ये बंगाली है, बिहारी है, बिहारी ही रहेगा तू ज्यादा। तो मैंने भक्तों में देखा, भक्तों की बात कर रहा हूं, वो तू बिहारियों जैसी बात करेगा, तेरी मेंटेलिटी बिहारियों जैसी है। वो भक्त हो गया है, 10 साल हो गया उसको, सैफ्रॉन डाला हुआ उसने, उसको भी बिहारी बुला रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कॉन्शियसनेस है तुम्हारी? वो तो हो सकता है बिहारी का बिहारी हो, लेकिन तुम कौन हो? जो तुम्हें बिहारी नजर आ रहा है वो तो तुम कौन हो? जब आप दूसरे को बोलते हो तो अपनी भी तो देखो ना अंदर, कि तुम्हें अभी तक यही नहीं समझ आया कि सब आत्माएं हैं। तो इसीलिए जो भक्ति है ना वो हमारे अंदर सीप नहीं करती। प्रभुपाद जी का तो इतना आंदोलन स्ट्रांग है, लेकिन हम उसी तरीके से व्यवहार करते हैं आपस में शरीर के आधार पर, मतलब एक दूसरे को शरीर ही समझते हैं, ये नहीं देखते कि ये भी एक जीवात्मा है, ये भगवान का अंश है। तो इसकी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, अभ्यास करने से सब कुछ होता है, यही यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। भक्त का लक्षण यही है कि वह हर एक का मित्र होता है। सुहृदं सर्वभूतानां, हर एक का वो हर एक का मित्र होता है। एक चींटी का भी मित्र होता है, एक सबका मित्र होता है वो, क्योंकि वो देखता है कि सब ये भगवान के तो अंश हैं, भगवान के दो बच्चे हैं। अगर इसको मैं कष्ट दूंगा, इसको दुख दूंगा, तो भगवान को दुख होगा। हम सब प्रभुपाद जी के ही तो परिवार के हैं। अगर हम एक किसी को दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को दुखी होंगे ना। जैसे वो कथा सुनी हुई है ना हमने, एक वो पिता था, उसके दो मतलब चार बच्चे थे, दो बच्चे ये टांग को दबा रहे थे, दो ये टांग को दबा रहे थे, सुना है ना, सबने सुना हुआ। चलो दोबारा सुना। पिता थे तो उसके चार बच्चे थे, तो चारों बच्चे जो है सेवा कर रहे हैं पिताजी की, तो उन्होंने डिवाइड कर ली सेवा। एक ने जो है दाई टांग दबानी शुरू कर दी, घुट रहे थे, दबानी मतलब उसको आराम दे रहे थे, थका हुआ था आराम, ऐसे दबाते हैं ना बुजुर्गों में, दबाते हैं उनको आराम मिलता है। तो एक इस टांग को आराम दे रहा था, एक इस टांग को, अब बातें कर रहे थे आपस में, और बातें करते करते कोई भैंस छिड़ गई। वो कहते ये ठीक है, वो कहते ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये ठीक है, और आपस में जो है गुत्थम गुत्था हो गए। वो गुत्थम गुत्था होते होते क्या किया, वो इस टांग को मारने लग गए और वो इस टांग को मारने लग गए। जो ये ग्रुप वाले थे, इस टांग की पिटाई शुरू कर दी उन्होंने, इसको तो दबा रहे हैं, इसकी पिटाई शुरू कर दी, और उन्होंने इसकी पिटाई शुरू कर दी। भैया मार तो पिता को पड़ रही है, और टांगे को तुम्हारी थोड़ा हो गई, टांगे तो पिता की है। हम भी ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करते हैं, ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा मेंबर है, मेरा डोनर है, ये ऐसे हाथ लगा लिया तुमने इसको, समथिंग लाइक दिस, या मेरी सेवा है ये, कैसे आ गए तुम। मान लो कोई अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, और आप जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं उसकी, आप उसकी तारीफ नहीं कर रहा, तो आप करोगे कुछ ना कुछ नुक्स निकालोगे उसको, कुछ ना कुछ उसकी टांग खींचोगे, नुकसान तो सेवा में हो रहा है, तेरी अपनी ईर्ष्या के कारण नुकसान तो भगवान को हो रहा है। तो ये भक्त के लक्षण नहीं है, ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण यह है कि वह हर एक का मित्र होता है। अगर कोई अच्छी सेवा कर रहा है तो हमें खुश होना चाहिए, हमारे भगवान की अच्छी सेवा करने वाला कोई आ गया, हमें तो ढूंढने चाहिए ऐसे व्यक्ति जो भगवान की और अच्छी सेवा करें, और अच्छी सेवा करें प्रभुपाद जी की। हमें खुश होना चाहिए कि देखो प्रभुपाद जी की सेवा हो रही है अच्छी से, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए ना, ना कि हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा रूप हो, हमारा नाम हो, हम हो, ये भक्त के लक्षण नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों अपना नाम किया क्या, आपको पता है अभी तो प्रभुपाद जी का उनके जो भक्त हैं वो गुणगान कर रहे हैं, लोग जानते हैं, लेकिन आज से लगभग 25 साल पहले इस्कॉन को, हरे कृष्ण हरे रामा को सब जानते थे, उसके फाउंडर आचार्य कौन है कोई नहीं जानता था। अभी मुझे अच्छी तरह से याद है, जो एक सीरियल आता था ना बहुत पहले, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन चलाता था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कौन है, हो गया आगे पहुंच गया था वो। ये क्वेश्चन जो था मेरे ख्याल 50,000 का था शायद, 50,000 तक पहुंच गया था वो, सॉरी 50 लाख का था, आधे तक पहुंच गया था वो। कितने मुश्किल मुश्किल प्रश्न उसने उत्तर दे दिए थे, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन नहीं बचा पाया, हार गया बेचारा। क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अपने आप को पीछे रखा है। प्रभुपाद जी अपने को सामने कभी नहीं किया, कृष्ण को, मूवमेंट को सामने किया, इसीलिए प्रभुपाद जी सफल हुए, इसीलिए प्रभुपाद जी का इस्कॉन सफल हुआ। और आज जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो उनकी मशाल लेके आगे चल रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं। वो अगर इस्कॉन का नाम हो रहा है, अगर प्रचार हो रहा है, उनका नाम कुछ भी नहीं हो रहा, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता उनको। हमारा जब ग्लोरी ऑफ इंडिया मंदिर बनना था, तो हमें शुरू शुरू में तो इतने लोग ही नहीं से जुड़े हुए थे, तो हमारा जो बजट था वो था 6 करोड़ रुपया, 6 करोड़ रुपया सिर्फ, इतना बड़ा मंदिर जो मिल गया तुमको। तो गुरु महाराज को बड़ी चिंता थी कहाँ से आएगा 6 करोड़ रुपया, इतने लोग थोड़ा थे, इतने लोग आप देखते थोड़े थे मूर्ति वाले लोग, कहाँ से आएगा 6 करोड़ रुपया। तो हिंदुजा को फिर हमने अप्रोच किया गुरु महाराज ने, मतलब तो हिंदुजा ने कहा ठीक है हम 50% हम दे देंगे, लेकिन आपको हमारा नाम लिखना पड़ेगा, मेन मेन एंट्रेंस में नाम लिखना पड़ेगा। गुरु महाराज का नो प्रॉब्लम, नाम से क्या जाता, मंदिर से बनेगा। तो ये है जो भक्त है वो चाहता है भगवान की सेवा हो, भगवान की सेवा के लिए वो ढूंढता है ऐसे अच्छे अच्छे लोग जो आए जो सेवा में लगे, नाम के चक्कर में नहीं। नाम के चक्कर में अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हम फेल हो गए, मतलब हम लोग हम ये जान नहीं पाए कि हमारा स्वरूप क्या है। क्योंकि भगवान जो है वो, अगर आप भगवान की सेवा में लगे हुए हो तो भगवान भी चाहते हैं पता है भक्तों की सेवा करना। देखो प्रभुपाद जी का कितना नाम हो रहा है, ये भगवान अरेंज कर रहे हैं ना सब। ये है भक्त और भगवान का संबंध, जो भगवान से प्रेम से सेवा से जुड़ा हुआ है तो जैसे वो सेवा करने के लिए हमेशा तैयार है, इस तरह से भगवान भी चाहते हैं अपने भक्त की सेवा करना। भगवान का और भक्त का ये प्रेम का संबंध है, यही तो यहां पर बताया ना। कोई अपने संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने में कितना ही पटु क्यों ना हो, किंतु यदि उसमें भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती तो उसके द्वारा धार्मिक सिद्धांतों का पालन समय का अपव्यय मात्र है। तो प्रेम हमारे हमारा होना चाहिए, और प्रेम का मतलब ही तब हमें समझ आता है जब हमारा भगवान में सेवा हम करते हैं, नहीं तो उसके अलावा तो प्रेम कुछ है ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे अगर आपको अपने शरीर में खाना पहुंचाना है, खाना खाना है आपको, तो आपको मुंह से ही खाना खाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे छिद्र हैं यहां डाल दो, क्या फर्क पड़ता है, छिद्र में तो डालना है, इसमें डाल दो, नाक में डाल दो, कहीं नो छिद्र है किसी छिद्र में डाल दो, आपको खाना मुंह में ही डालना पड़ेगा। इसी तरह से श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको प्रेम करना है सारी सृष्टि से तो उसका तरीका यह है कि पहले भगवान से प्रेम करना सीखो। अगर आप भगवान से प्रेम नहीं करते तो सारी सृष्टि से नहीं कर सकते प्रेम, वो आपका धोखा होगा, वो नाम होगा, प्रेम नहीं है वो। प्रेम तभी आपको पता लगेगा क्या है जब प्रेम के जो स्रोत है जहां से प्रेम आ रहा है उससे जब कनेक्ट होंगे। तो प्रेम, भगवान का प्रेम हमारे अंदर आए इसके लिए ये सारी शुद्ध भक्ति जो प्रभुपाद जी हमें दे गए हैं उसको करना है। अगर हम ध्यान से भगवान के नामों का जप करते हैं, अपराधों को नहीं करते हम, तो स्वतः ही प्रेम जागृत होगा, है ना। क्योंकि प्रेम तो हमारे अंदर है लेकिन वो छुपा हुआ है। क्या है श्लोक वो चैतन्य चरितम का, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधे कबु ना, साधे साधे कबु, साधे की जरूरत नहीं है, शुद्ध प्रेम तो है ही। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, अपने आप उदय होगा जब हम ध्यान से जप कर रहे हैं, ध्यान से भागवतम सुन रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अब्जॉर्ब होके समय निकाल रहे हैं। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो समय नहीं निकालते, मतलब तो और भी काम कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, मतलब जो भी कार्य कर रहे हो वो एब्जॉर्ब होके करो, भगवान वो सबसे बड़ा है। जैसे अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि इससे बड़ा कार्य नहीं है कोई भी, इससे महत्वपूर्ण कार्य कोई भी नहीं है संसार में। भागवतम क्लास में बैठे तो यहीं पे होना चाहिए, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है, हम भागवतम सुन रहे हैं। और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें मौका दिया, हम भागवतम बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, एक भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। इस तरह से जब हम करेंगे तो प्रेम अपने आप होगा, प्रेम तो है हमारे अंदर, उदय करना है उसको। और जब भगवान के प्रति प्रेम उदय हो जाएगा तो सबसे प्रेम करेंगे हम, क्योंकि प्रेम जो है आध्यात्मिक है, प्रेम भौतिक नहीं है। भौतिक प्रेम जो है वो लस्ट है, دعا کہتے ہیں نا آئی لو یو, یہ لو نہیں ہے, ہونا چاہیے آئی ہیو گریٹ لسٹ فار یو, یہ بولنا چاہیے. لیکن وہ اچھا نہیں لگتا نا, لسٹ شبد اچھا نہیں ہے. وہ کرنا انہوں نے وہی ہے, آئی لو یو ویری مچ, آئی کین ناٹ لیو وداؤٹ یو. ایسے ایک پتی پتنی تھے, اتنے آپس میں ان کا پریم تھا, اتنا آپس میں پریم تھا کہ اکٹھے ہی رہتے تھے ہمیشہ, کوئی ویکتی دیکھتا ہی نہیں تھا ان کو الگ, ہمیشہ جب دیکھو اکٹھے, جب دیکھو اکٹھے. اب ہوا کیا کہ پتی کی مرتیو ہو گئی, پتنی ابھی زندہ ہی نہیں, پتنی کی مرتیو نہیں اس کے ساتھ ہوئی. ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ دونوں کی مرتیو بھی اکٹھے ہوگی, وہ تو ہمارے ہاتھ میں تھوڑا. اب پتی کی مرتیو ہو گئی تو پتی کو رکھا ہوا ہے ایک کمرے میں, ابھی ایسے ٹائم پہ مرتیو ہوئی تھی کہ اس کو رکھنا تھا, پتنی ادھر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کا جو بھائی تھا وہ کہتا ہے دیدی جیجا جی کے پاس جاؤ نا, آپ یہاں بیٹھے ہو, وہ ادھر اکیلے. کہتی ہے ڈر لگتا ہے, ڈر لگتا ہے, ادھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کہاں گیا پیار تمہارا, اب پیار کہاں گیا؟ تو پیار نہیں ہے, تو شریروں سے پیار کو پیار تھوڑا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے, ڈیڈ باڈی تو ہمیشہ ہی ہے, یہ ڈیڈ باڈی نہیں ہے, یہ تو ڈیڈ باڈی ہے نہیں, آتما ہے اس کے اندر, اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہی ڈیڈ باڈی, آپ کو لیونگ نظر آ رہی ہے. اندر اندر جو آتما ہے اس کے کارن یہ لیونگ ہے, باڈی تو ہمیشہ ہی ڈیڈ ہے. جیسے یہ کپڑے ہیں, کپڑے کپڑے تو ہمیشہ ہی ڈیڈ ہے نا, یہ تو نہیں کہ ابھی یہ لیونگ ہے, جیسے بھی ہینگر میں ٹانگوں گا تو ڈیڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یہ لاجک, کہ ابھی تو دیکھو ہل بل رہے ہیں, میرا کرتا ہل رہا ہے, لیونگ ہے یہ, ابھی میں نے اتار کے ہینگر میں ڈالا تو ڈیڈ ہو گیا. یہ ایسے بولتے ہیں نا ڈیڈ باڈی, یہ بھی تو ڈیڈ باڈی ہے. تو ڈیڈ باڈیوں میں تھوڑا پریم ہوتا ہے. ایک ایسے ہینگر میں لیڈیز سوٹ لگا دیا, ایک ہینگر میں جینٹس سوٹ لگا دیا, ایسے رکھ دیا پاس پاس, اور 10 سال لگ دیا ان کو, پیار ہو جائے گا اس میں, لوگ یہی کرتے ہیں. اور شریروں کو ملانے سے تھوڑا پیار ہو جاتا ہے, پیار تو آتما کا تتو ہے, جہاں جو بول رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پریم کیا ہوتا ہے, لسٹ کو پریم کہے بیٹھے ہیں اور دکھی ہو رہے ہیں. وہ دکھی ہو, پریم مت کرو, پریم میں بڑا دکھ ہے. وہ پریم میں دکھ نہیں ہے, لسٹ میں دکھ ہے مورخ, تو پتہ ہی نہیں ہے پریم اور لسٹ میں فرق. تو دکھی تو ہوئے گا ہی تو. اور اگر تو سونا خریدنے جا رہا ہے اور مل رہا ہے تجھے لوہا, تو دکھی تو ہوئے گا ہی ہوئے گا. خریدنے گیا تھا سونا, سونا دے دو, بہت سارے پیسے لے کے آیا, اس نے پکڑا دیا لوہا, تو دکھی تو ہوئے گا ہی ہوئے گا. تو پتہ ہی نہیں ہے, پہچان نہیں ہے لوہے اور سونے, تیرا قصور ہے نا. تو پریم اس سنسار کی وستو نہیں ہے, جان لو, سن لو, سمجھ لو, تو سکھی ہو جاؤ گے. جو دکھی رہو گے, وہ نہیں ملا چلو, ماں باپ سے پریم نہیں ملا, پتی سے ملے گا. پتی پکچروں میں دیکھا تھا, شادی ہو جاتی ہے تو بڑی سکھی ہو جاتی ہے, وہ پتی سے بھی نہیں ملا, بچوں سے ملے گا میرا بچہ, اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں, بولی جائیں بچہ دے گا مجھے, بچوں سے نہیں ملا, اور بڈھے ہو گئے بچوں سے نہیں ملا, وہ بچوں کے بچوں سے ملے گا, وہ پریم ہے ہی نہیں, کہاں سے ملے گا, ریگستان میں پانی ملتا ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آئی, سارا جیون نکل گیا, اتنی سی بات نہیں سمجھ آئی کہ ریگستان میں پانی نہیں ہوتا, مورکھتا نہیں ہے. اسی لیے اگر ہم سمجھدار بننا چاہتے ہیں تو بھکتوں کا سنگ کریں, شیلا بھوپال جی کی کتابوں کا سنگ کریں, بہت جلدی سمجھ آ جائے گا ہمیں, پھر ہم دکھی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم پریم کے رستے پہ چل پڑیں گے, پریم مل جائے گا تھوڑے دنوں میں, اور اسی جیون میں پریم ملے گا. یہ نہیں کہ اگر پریم پراپت کرنا ہے تو مرنا پڑے گا, یہ کوئی بات ہوئی اب سمجھ لینا. جیسے جیسے مطلب لوگ کہتے ہیں نا, او جی کس نے دیکھا جی, وہ مرنے کے بعد کوئی بتانے آتا ہے کہ سورگ گیا یہاں گیا, وہ کچھ نہیں ہوتا جی, ایسی باتیں ہیں جی, تو اس لیے نہیں مانتے نا. लेकिन इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको मरना नहीं पड़ेगा, आप इसी जन्म में वैकुंठ लोक के दर्शन कर सकते हो, इसी जन्म में आपको प्रेम का अनुभव हो सकता है, इसी जन्म में, इसी शरीर में। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पे चलो, श्रील प्रभुपाद जी ने रास्ता बताया है, ये इसीलिए बताया कि इसी जन्म में अनुभव करो आप भगवान के प्रेम का, वैकुंठ लोक का, इसी जन्म में अनुभव करो। मरने की जरूरत नहीं है आपको, मरने के बाद तो जाओगे ही जाओगे, उसको छोड़ दो आप, उसको उसकी बात रहने दो। अगर आपको नहीं सुना, इतनी भौतिकता में हम लीन है, नो प्रॉब्लम, इसी भौतिक शरीर में अनुभव करोगे आप। भक्तों का संग करो, देखो ऐसे लोग हैं जो प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, आप उनसे उनसे मिलो ना, उनसे दोस्ती बढ़ाओ ना। दोस्ती तो हम रिश्तेदारों में करते हैं, शादी है बच्चे की तो किनको बुलाया, सारे रिश्तेदारों को बुलाया। वैसे मंदिर आते हैं, कार्ड में हरे कृष्णा छपवाया, सब कुछ छपवाया, और शादी कर रहे हैं रिश्तेदारों के हिसाब से। डीजे वहां पे है, सब कुछ है वहां पे, प्याज वाला खाना भी है, सब कुछ है, तब तो आपकी भक्ति कहां चली गई? और भक्तों को बुलाओ ना। नहीं, नहीं समझ में आती बातें, नहीं आती समझ में, नहीं आती कैसे समझ में नहीं आ रही? आप तो प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, कैसे समझ आएंगे? रिश्तेदारी वो है तो कहां से भक्ति आएगी? भक्तों के साथ रिश्तेदारी जोड़ो ना, भक्तों के साथ प्रेम बनाओ ना, तब भक्ति आएगी। ये एक रियलिटी है, कोई 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 इमेजिनेशन नहीं है, रियलिटी है। इसके लिए हमें प्रैक्टिकली इन चीजों को करना है और हमारा जीवन सफल है, फिर मनुष्य जीवन सफल है, बहुत सुंदर है मनुष्य जीवन जो भगवान ने दिया, बहुत सुंदर जीवन है। ब्रह्म सौख्यम त्वंतम तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। ब्रह्म सौख्य मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है, ये जो आनंद मिलेगा इसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसमें क्या है, भौतिक संसार में क्या है? बेकार, कहीं तो बेकार है, तो मतलब मूर्खता है। जैसे कोई व्यक्ति जो है मिराज के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है, पानी 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 मनुष्य में कहां होता है, भाग रहा है, वो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है तुझे, तो धोखे में है भैया, दिख रहा है तुझे, है नहीं, मान ले मेरी बात, वो पानी नहीं है। कितनी बार भाग चुका है तू, नहीं मिला ना, तो वहां क्या मिल जाएगा तुझे? नहीं दिख रहा, वो दिख रहा है, बस पहुंचने ही वाला, सच बात है नहीं? तो बताओ ना लोगों को, लोगों को बताओ अच्छी तरह से, और हमें प्रभावित नहीं होना लोगों से। यही प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि अभी बताया ना, आखिर में यहां बताया ना, यहां दूसरे पैराग्राफ के, यहां तक कि हिरण्यकश्यप भी अपने को नहीं बचा पाया जब उसके समक्ष नरसिंहदेव काल रूप में प्रकट हुए। किसी की भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है, शून्य है। ये समझाना है लोगों को, लोग पागलों की तरह सोच रहे हैं, मैं इकट्ठा कर लिया, ये इकट्ठा कर लिया। ओ भैया एक आया, देखो कितने बड़े वहां पे जो उन्होंने बड़े बड़े वो बना लिए थे, होटल बना लिए थे केदारनाथ में, एक झटके में सब सभा, एक फ्लड आया सब सभा हो गया। एक एक क्षण में भगवान कुछ भी कुछ कर सकते हैं, पचड़ों में पड़े हुए हिरण्यकशिपु को भगवान ने कैसे मार दिया? यहां पर लटाया, नाखूनों से मार दिया, नाखूनों से, बताओ कुछ ऐसे खत्म, सीन खत्म। तनु भृंगम, जैसे एक कोई मसल देता है, या बच्चा जैसे ऐसे किसी को मच्छर को मछल दे, ऐसे मछल दिया। वो कितना बड़ा हिरण्यकशिपु, डर जाते थे लोग, इंद्र आता था पांव दबाता था, पता आपको? हिरण्यकशिपु जब बैठता था सिंहासन पर तो नीचे पांव रखता था तो वो इंद्र लेट जाता था, वो पांव जमीन पर नहीं रखता था, इंद्र के सिर के ऊपर पांव रखता था हिरण्यकशिपु, ये था हिरण्यकशिपु। राजा, देवताओं का राजा इंद्र आके पांव दबाता था हिरण्यकशिपु, क्या समझते हो उसको? और भगवान ने क्या किया? ऐसे मसल दिया। भौतिक शक्ति, ये कह रहे हैं किसी भी भौतिक शक्ति या पराक्रम भगवान की शक्ति के सामने शून्य है। जैसे आप अंधेरे में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाओ तो इतनी लाइट जला देते हैं वहां पे कि आप रात को कोई भी गेम खेल सकते हो, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी खेल सकते हो वहां पे। ऐसा लगता है कि दिन चढ़ाया हो, लेकिन जब सूर्य चढ़ा होता है ना सुबह के 12 बजे तो लाइटें नजर ही नहीं आती कि जल रही है नहीं जल रही। आज आगे देखो पूरी लाइट जलाई होती है ना, फ्लड लाइट, वो नजर आती नहीं जल रही है कि नहीं जल रही। तो इसलिए सूर्य के सामने कोई रोशनी क्या है? कुछ नहीं है। इस तरह से भगवान के सामने कुछ भी पराक्रम कुछ नहीं है। इसलिए हमें डरना भी नहीं चाहिए, हम डरते हैं। वो भगवान जिसके साथ है उसको क्या डर, क्यों डरते हो? डरना है तो भगवान के भक्तों से डरो। अगर डरना ही है, अगर बहुत ही आपको शौक है कि डरना है, तो भगवान के भक्तों से डरो, जरूर डरो। भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। इसलिए तो देखो भगवान नरसिंह देव के रूप में आ गए, क्योंकि हिरण्यकशिपु बहुत कुछ कर रहा था। भगवान ने कहा ठीक है चल, ठीक है ठीक है ठीक है जी। वो जब प्रहलाद महाराज के पीछे पड़ गया तो फिर भगवान से देखा नहीं गया। और भगवान जब आए इतने गुस्से में थे कि कोई ठंडा नहीं कर पा रहा उनको। लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी सब डर रहे हैं, काम रहे हैं, इतना गुस्सा आ गया था उनको, मेरे भक्त को तूने तंग किया है, मेरे भक्त को मारना चाहता है। तो भक्तों से डरो, भक्तों का आदर करो, भक्तों की सेवा करो। देखो भगवान कैसे आपके जीवन में आ जाएंगे और जीवन सुंदर ही सुंदर होता चला जाएगा। कोई चिंता नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा मैंने अपने 4 बच्चे छोड़े, 4 बच्चों का त्याग किया मैंने और भगवान ने मुझे लाखों बच्चे दे दिए। नहीं, जितना प्रभुपाद जी के बच्चे उनकी सेवा करते उससे कई गुना ज्यादा उनके शिष्यों ने सेवा की। शिष्य भी तो बच्चे समान होते हैं ना। प्रभुपाद जी बताते हैं 2 तरह से आप बच्चे पैदा करते हो, एक तो अपने वीर्य से और एक अपने आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल से जो उन्होंने बच्चे पैदा किए तो जो उनके शिष्य थे, शिष्य भी बेटे की बेटियों की तरह होता है। कितने बेटे बेटियां मिले उनको। तो ऐसा नहीं हमें कि मेरा बच्चा मेरा पुत्र आपके शरीर से निकला इसलिए मेरा पुत्र। सारे हमारे अपने संबंध बनाए ना। किसी से अगर आप भगवान के थ्रू, भगवान को बीच में रखते हुए किसी को आप बच्चा बनाते हो, किसी को अपना भाई बनाते हो, किसी को पिता बनाते हो, ये देखो इसमें इंटेंसिटी कितनी इंटेंसिटी होगी, कितना रस होगा इसमें। लेकिन भगवान को बीच में रखते हुए, भगवान को हटा के बनाओगे तो फिर क्या फायदा? फिर एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा, वही कभी है उसका क्या फायदा? ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी की कोई कहा जा रही, बोलो कोई बोलो। वेरी गुड बिल्कुल ठीक बोला आपने। प्रभुपाद जी ने स्कॉन पैदा किया सबके लिए। सारे असुर असुर सब आए हैं इसमें। ठीक बात है, सच्ची बात है। ठीक है, और बताओ। और किसी का कोई प्रश्न और समीक्षा? ओके, जय श्री रघुपाल की।